ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद अध्याय 2 दक्ष द्वारा शिवजी को शाप उसका दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक। विदुर वाच भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्र वत्सलः विद्वेश मकरोत्मस्मात् अनादत्यात्मजाम सतिम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? तात्पर्य, चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिवजी तथा दक्ष के बीच मन मुटाव का वर्णन किया गया है। जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ। यहाँ पर शिवजी को भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। वे सभी जीवों पर समभाव रखते हैं और उनमें अन्य गुण भी हैं। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिवजी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का होतक है। तो फिर वही दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती को अपनी शरीर ही त्यागना पड़ा? हरे कृष्णा। तो आज हम ये चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय का आज प्रारंभ है। तो आप पिछले अध्याय में हम सब सुने हैं कि मनु की पुत्रियों की वंशावली, तो विस्तार में सब वर्णन किए हैं कि कैसे मनु के जो प्रिय हैं उनके वंश कैसे आगे बढ़े, प्रसूति और उनके कैसे आगे सब कैसे आकुति देवहूति और प्रसूति उनके कैसे वंश आगे बढ़े, उसके विषय में पिछले अध्याय में वर्णना की गई है। तो जब वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय मुनि, तो वो कहते हैं कि जो सती नामक जो कन्या थी, जो 16वें नंबर की कन्या, वो शिवजी की पत्नी थी, किंतु वो कहते हैं कि बाद में वो बहुत ही अल्प वयस में ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, क्योंकि शिवजी और दक्ष के बीच में खराब संबंध के कारण दक्ष ने अनादर किया शिवजी का और उस कारण उन्होंने शरीर त्यागा। तो केवल संक्षेप में एक श्लोक में ही वर्णन किया मैत्रेय मुनि ने। तो इसीलिए इस अध्याय के पहले श्लोक में विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे क्या बात हो गई कि इतना क्यों आपस में इतना क्या कारण हो गया कि सती को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा। और पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनी पुत्र सती का अनादर क्यों किया दक्ष प्रजापति ने, क्योंकि शिवजी तो अत्यंत गुणवान है, शीलवान है, स्नेहवान है, ऐसे भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्या, इसका क्या कारण है? कि स्वाभाविक प्रश्न है, क्योंकि शिवजी को सब जानते हैं शिवजी कितने महान हैं। तो बल्कि दक्ष तो उसको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए था कि उसकी पुत्री की विवाह भगवान शिव से हुई, फिर भी वो दक्ष इतना ईर्ष्यालु क्यों बन गया? तो यह स्वाभाविक प्रश्न किसके मन में आ रहा है? विदुर जी के मन में। तो इसलिए विदुर जी इस श्लोक में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तात्पर्य में भी श्री प्रभुपाद जी शिव जी के गुणों का वर्णन करते हैं। कहते हैं शिव शब्द का क्या अर्थ है, सर्व मंगलमय। शिव शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय, इसलिए भगवान शिव सर्व मंगलमय है और भगवान शिव का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने शांत तथा विरक्त है कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाए हैं। आप सोचिए भगवान शिव कौन है, बहुत ही महान उनका स्थान है, सारे देवों में श्रेष्ठ है। अगर वो चाहे तो अपने लिए अलग ग्रह भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतने विरक्त हैं कि केवल एक साधारण पेड़ के नीचे रहते हैं। तो उनसे कोई उनको कोई आशा नहीं है दूसरा उनका मान करें सम्मान करें या कुछ करें नहीं करें, वो केवल भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते हैं। तो ऐसे महान शिव उनके प्रति कोई कैसे ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन क्या करें संसार की ये संसार में ऐसा हो जाता है कई बार, जो साधु रहते हैं उनके प्रति भी शत्रुता कई लोग करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो प्रसिद्ध श्लोक है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वभूतानाम अजात शत्रवा शांत साधव साधु भूषण, कि जो साधु होते हैं वो कैसे होते हैं, तितिक्षवा कारुणिका कि बहुत सहनशील होते हैं, तितिक्ष और कारुणिका सबके प्रति उनके हृदय में करुणा रहती है, और अजात शत्रुवा शांत, तो ऐसे साधु के कोई शत्रु नहीं होते, साधव साधु भूषण, तो ये सब साधु के भूषण है। तो अगर कोई उनके शत्रु नहीं हो सकते तो फिर हम कैसे देख रहे हैं, कैसे दक्ष ने क्यों शत्रुता की, या कई बार हम देखते हैं पांडव के प्रति कैसे सब कौरवों ने शत्रुता की, उसका अर्थ यह है कि जो वैष्णव है वो किसी और को अपना शत्रु नहीं मानते। कई बार दूसरे लोग वैष्णव को अपना शत्रु मान लेते हैं अज्ञानपूर्वक, लेकिन जो वैष्णव है वो कभी भी दूसरे को अपना शत्रु नहीं मानता। कई इसके उदाहरण है, आप जानते हैं प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यपु ने इतना उनको तकलीफ दिया लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं सोचा कि ये मेरा शत्रु है, या युधिष्ठिर महाराज ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि दुर्योधन और उनके जो भाई थे वो सब मेरे शत्रु है। नहीं, जो हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजारों में जब उनको पीटा गया तो उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे शत्रु है, नहीं, बल्कि आप सुने होंगे कि जब हरिदास ठाकुर की पिटाई हो रही थी और उस समय चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र भेज दिया था वो सबका गला काटने के लिए जो व्यक्ति उन्हें मार रहे थे, लेकिन उस समय हरिदास ठाकुर ने क्या प्रार्थना की कि हे प्रभु इन सबका आप रक्षा कीजिए, ये सब अज्ञानी है, आप इनकी रक्षा कीजिए, इनको आप कृपया वध मत कीजिए, और उनके उनके प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि वो सुदर्शन भी कुछ नहीं कर पाया, और अंत में चैतन्य महापुरुष स्वयं हरिदास ठाकुर के शरीर के ऊपर अपने आप को प्रकट किए और उनकी रक्षा की। जब महाप्रकाश शिला हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि हरिदास याद है जब तुम्हें 22 प्रजारों में पीट रहे थे, तब तुमने तो उनको मुझे मारने नहीं दिया उन लोगों को, लेकिन फिर अंत में मैंने तुम्हारे शरीर में रक्षा किया, देखो उन्होंने अपने शरीर में कोड के निशान दिखाए, कौन, चैतन्य महाप्रभु, कि कैसे जब तुम्हें वो मार रहे थे तो वास्तव में वो मुझे मार रहे थे। तो ये है महान वैष्णव के लक्षण कि कैसे वो कभी भी अन्य को अपना शत्रु नहीं मानते और हमेशा तितिक्षवा सहनशील होते हैं, चाहे कोई भी उन्हें कितना भी कष्ट क्यों न दे, कोई उनका अनादर करे अपमान करे, लेकिन वैष्णव सब सहन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भी प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं जब भक्तों के गुणों के वर्णन करते हैं, कहते हैं अद्वैष्ट सर्वभूतानाम मैत्र करुणा एवच अनंकार सर्वभूतानाम समय भक्त समय प्रिय। तो कहते हैं कि वो जो भक्त है जो मेरे प्रिय भक्त है उनके क्या लक्षण है, अद्वैष्ट सर्वभूतानाम कि किसी भी जीव के प्रति वो द्वेष भाव नहीं रखते। द्वेष भाव माने क्या, कि दूसरों का कैसे हम नुकसान पहुंचाए उसके द्वेष भाव, तो वैसे द्वेष भाव कोई भक्त अपने मन में नहीं रखते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रीय करुणा एवच और सबके प्रति उनकी मित्रता की भाव रहती है, मैत्री भाव और करुणा का भाव, वो चाहते हैं सबका कैसे कल्याण हो सबका भला हो। और अनहंकार सर्वभूतानाम तो और वो उनमें अहंकार नहीं रहता, तो ऐसे जो भक्त हैं भगवान के शुद्ध भक्त वो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। और अन्य शब्दों में हम ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान के प्रिय होना चाहते हैं तो हमें भी इन गुणों का हमें धीरे धीरे अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, उनका अनुशीलन करना चाहिए। तो क्योंकि इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी शिव जी का गुणगान कर रहे हैं, तो हम भी कुछ शिव जी के महिमा के बारे में आज श्रवण करेंगे थोड़े समय। तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान शिव कौन है, कि वो सबसे महान वैष्णव है। भगवान कृष्ण के ही एक विशेष अवतार है, कहते हैं गुणा अवतार। ब्रह्म संहिता का प्रसिद्ध श्लोक है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु हो, यह शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो भगवान शिव कौन है, वो कृष्ण ही है, गोविंद के ही एक विशेष अवतार है। जिस तरह की दूध और दही में अंतर है भी और नहीं भी है, उसी दूध से ही दही बनता है। दूध में अगर हम थोड़ा कोई खट्टा चीज डाल दें तो दूध किसमें परिणत हो जाता है, दही में। उसी प्रकार भगवान विष्णु, भगवान गोविंद ने, गोविंदम आदि पुरुषम, उनके एक विशेष रूप है। कौन? भगवान शिव। और किस एक विशेष कारण के लिए, क्या न संसार का संहार करने के लिए इत्यादि। तो शंभु का रूप स्वीकार करते हैं स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद। लेकिन एक अंतर भी है, हम दही को वापस दूध में परिणत नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार हालांकि शिव जी भगवान कृष्ण से ही आए हैं, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा तमोगुण का मिश्रण है। तो लेकिन फिर भी हमें कभी शिव का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो महान वैष्णव है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। तो भागवतम में ये उदाहरण दिया है कि कैसे निम्न गानम, सारे नदियों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, गंगा जी। उसी प्रकार और सारे देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, भगवान हरि। और सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ है शिव जी। और सारे पुराणों में कौन सा श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवतम। तो चार उदाहरण दिए हैं, तो हम देख सकते हैं भगवान शिव परम वैष्णव है। और श्रीमद् भागवतम में कई बार भगवान शिव जी का हम प्रसंग सुनते हैं, जैसे अभी हम ये पूरा सुनेंगे दक्ष और भगवान शिव का जो प्रसंग है, फिर आगे चल के इस चतुर्थ स्कंद में ही हम देखेंगे कैसे प्रचेताओं की कहानी आएगी, कि महान भक्त है प्रचेता, तो उनको भगवान शिव जी आके उनको शिक्षा देते हैं कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। तो ये भी एक बहुत महान शिक्षा है कि जो भगवान शिव जी के अच्छे भक्त रहते हैं, जब शिव जी उनके प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, उनको भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए बताते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण है। एक बार ये जो कहानी वृक्ष की है, आप जानते हैं सनातन गोस्वामी और शिव जी बड़े मैत्रीय उनमें संबंध था। सनातन गोस्वामी जो गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, आप सुने होंगे, तो वहां पे सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे। तो क्या हुआ, उन्हें बहुत मच्छरों ने परेशान किया, तो सनातन गोस्वामी वहां से सोचे मैं ये स्थान छोड़ के चला जाऊंगा। तो उसी दिन रात में भगवान शिव उनके सपने में आए, बोले हे सनातन, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान का भजन करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप यहाँ पे छोड़ के मत जाइए, मैं ऐसा आपको वचन देता हूँ कि कल से एक भी यहाँ पे मच्छर नहीं आपको प्राप्त होंगे, आपको कोई मच्छर परेशान नहीं करेंगे। तो आज भी चकलेश्वर महादेव जो वहां पे है मानसी गंगा के तट पे, कहते हैं आज भी वहां एक भी मच्छर नहीं आता, और वहीं पे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। तो कई वर्षों तक सनातन गोस्वामी ने वहां पे भजन किया, और प्रतिदिन वो गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे सनातन गोस्वामी। और यहाँ पे वृंदावन में है ही प्रसिद्ध मंदिर हमारे गोपेश्वर महादेव, बनखंडी महादेव, तो ब्रज में कई सारे शिव जी के मंदिर हैं, और वैष्णव सब दर्शन करते हैं। लेकिन जो अन्य लोग हैं, बाहर के लोग, वो जब शिव जी की पूजा करते हैं और जो वैष्णव करते हैं, उनमें अंतर है। क्या अंतर है, कि जब बाहर के लोग शिव जी की पूजा करते हैं, वो उन्हें परम भगवान समझ की पूजा करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उनका पूजा का क्या उद्देश्य है, वो कुछ भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं, कि ये प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, अन्य जो भौतिक इच्छा है वो प्राप्त हो जाए। लेकिन जो वैष्णव भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो क्या समझते हैं, उनको पता है कि भगवान शिव परम भगवान नहीं है, वो कृष्ण के महान भक्त हैं। और उनसे वो क्या प्रार्थना करते हैं, किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति की प्रार्थना नहीं करते, वो केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि कैसे उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि वो महान वैष्णव है, इसे शिवजी चाहे तो कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो अगर हम इस चेतना से भगवान शिव जी की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही हमें शिक्षा दी है। जब चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत के यात्रा में गए थे तो कई सारे प्रसिद्ध शिव जी के मंदिर उनके रास्ते में आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वो सारे शिव जी के मंदिर में गए, वहां पे प्रणाम किए और नित्य और कीर्तन किए। कई सारे महान शिव जी के मंदिर जैसे मल्लिकार्जुन तीर्थ एक है दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जो कि कृष्णा नदी के तट पे है। तो उस मल्लिकार्जुन तीर्थ में चैतन्य महाप्रभु गए, वहां पे वो दर्शन किए शिव जी के, नित्य कीर्तन किए। फिर वो रामेश्वर गए, आप तो जानते हैं रामेश्वर वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जहां पे शिव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहां भी चैतन्य महाप्रभु गए और नित्य कीर्तन किए और बड़ा आनंद से वो वहां पे थे। और एक मंदिर है भगवान शिव जी का प्रसिद्ध वृद्ध काशी, जैसे उत्तर काशी है वैसे दक्षिण भारत में वृद्ध काशी है जो कि वृद्धाचलम में है वहां पे, और उसको कालहस्ती भी कहते हैं, वो भी एक बहुत प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां भी गए। शिवकांची जो विष्णु कांची शिवकांची पास पास में है, तो चैतन्य महाप्रभु शिवकांची भी गए। और त्रिकालहस्ती, ऐसे कई महान शिव जी के मंदिर है दक्षिण भारत में, वहां सब शिव जी अपने दक्षिण यात्रा, चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण यात्रा के भ्रमण के समय वहां पे गए थे। और लिंगराज का मंदिर तो है ही अति प्रसिद्ध। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर से पुरी आ रहे थे तो रास्ते में लिंगराज मंदिर है, क्योंकि जितने भी भगवान विष्णु के महान तीर्थस्थली है वहां पे शिव जी किस रूप में विराजमान है, क्षेत्रपाल के रूप में। तो इसीलिए जो श्री क्षेत्र है जगन्नाथपुरी धाम, उसके क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान है लिंगराज में शिव जी। तो चैतन्य महाप्रभु आए वहां पे दर्शन किए और बहुत प्रसन्नता के साथ कीर्तन किए। देखिए साधारणतः क्या होता है कि शिव जी नृत्य करते हैं, हम जानते हैं नटराज की, जब भगवान का जब भी कीर्तन होता है तो शिव जी उन्मत होकर कीर्तन करते हैं। लेकिन लिंगराज मंदिर में क्या उल्टा हो गया, कृष्ण जी जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए वो शिव जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि हमें शिव जी का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी उनके मंदिर में हम जाएं हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि शिव जी भगवान कृष्ण का नाम सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, कीर्तन करें, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और उनका हमें उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्या, कि हमें भी आप कृष्ण भक्ति दीजिए। क्योंकि शिव जी क्या करते हैं, इसका भी एक शिव जी कहते हैं पार्वती को, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। तो शिव जी कहते हैं दुर्गा जी को पद्म पुराण में कि मैं क्या करता हूं ना, हर समय भगवान राम का नाम लेता हूं, राम राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे, जो राम शब्द है उस राम राम में उच्चारण करके उसी में मैं आनंद प्राप्त करता हूं। क्योंकि जो एक नाम है भगवान राम का वो किसके तुल्य है ना, 1000 विष्णु के नाम के तुल्य है। फिर और एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, और एक कृष्ण के नाम 3 राम जी के नाम के समान है। तो इसलिए भगवान शिव हमेशा वो राम जी का नाम लेते हैं, हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं, उसी में हमेशा वो मत रहते हैं। हम देखे होंगे आप तस्वीर जब देखते हैं शिव जी का, वो हाथ में माला भी पकड़े रहते हैं हमेशा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम का वो उच्चारण करते हैं। और इसीलिए जब उनको उनके भक्त जब मांगते हैं मुझे ये दीजिए वो दीजिए, जल्दी से शिव जी उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते कि उन्हें कोई विचलित ना करे, ठीक है ये चाहिए चलो ये लेके भागो यहां से, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी सबकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उनका आशुतोष भी कहते हैं। और एक प्रसिद्ध श्लोक है जब चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण किया शिवाष्टकम, तो शिव जी की महानता का इसमें वर्णन है, श्री राम गोविंद मुकुंद सौरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृत पान मत्त भृंगादि पाया अखिल दुख हंत्रे। तो इस श्लोक में भी कहते हैं कि शिव जी क्या करते हैं हमेशा, श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य। तो जो कृष्ण के बहुत नाम है, राम गोविंद मुकुंद शौर्य इत्यादि, इन सब नाम का उच्चारण करते हैं। इति नामा मृत पान मग्ना, तो जो शिव जी है वो हमेशा इन नामों के अमृत को पान करके हमेशा उन्नत रहते हैं। कोई मधुमक्खी कोई अगर बहुत अच्छा फूल मिल जाए तो उसी के वो उसके अमृत को पान करने में मत हो जाता है। तो उसी प्रकार शिवजी हमेशा इन भगवान कृष्ण के नाम के उच्चारण में उन्मत्त रहते हैं। तो ऐसे शिवजी को मैं प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार शिवजी की महानता हम देख सकते हैं। और यहां पे विशेष एक जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं शिवजी का जो गुण है, वो कहते हैं कैसे वो सहनशील है और कैसे वो अत्यंत कहते हैं कोई भी शिवजी का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वो शांत तथा विरक्त है और शीलवान पुरुष है। तो ये गुण के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे शिवजी बहुत सहनशील है, क्योंकि ये महान व्यक्ति का एक लक्षण है कि वो सहनशील होता है। एक जो भागवत में एक कथा आती है, आप सब सुने होंगे, भृगु मुनि की कथा, कि एक बार सारे ऋषि मुनि बैठे थे, उनकी सभा थी और उनके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि सबसे महान कौन है, शिवजी ब्रह्मा जी या भगवान विष्णु। तो उन्होंने भृगु मुनि को चुना। भृगु मुनि वास्तव में भगवान विष्णु के महान भक्त थे। तो उन्होंने भृगु मुनि को चुना कि आप जाइए और परीक्षा कीजिए कि तीन में सबसे महान कौन है। तो भृगु मुनि गए, तो आप सब सुने ही है ये कहानी। सबसे पहले किसके पास गए, वो ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जब गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, तो केवल वहां पे गए तो इतने मात्र से ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्योंकि वो तो उनके पुत्र हैं भृगु मुनि। तो ब्रह्मा जी को देखते ही उनको प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो भृगु मुनि ने जानबूझ के उनका आदर नहीं किया परीक्षा लेने के लिए। और केवल इतने, उनको कुछ कहा नहीं कि कुछ बोला नहीं, बस केवल जाके वहां खड़े हो गए और इतने मात्र से ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो भृगु मुनि बोले नहीं नहीं ये तो बहुत, इनमें कोई सहनशीलता नहीं है, तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो फिर वो गए किसके पास, शिव जी के पास। और वहां पे वो क्या किए, शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, उनके भाई हैं भृगु मुनि, उनको देख के आलिंगन करने आए। तो शिव जी उनको देख के दूर भागे, बोले अरे अरे दूर रहो दूर रहो, क्या गंदा शरीर है, स्नान नहीं करते, शरीर में सब भस्म इत्यादि लगा है, मेरे को छुओ मत। और जब शिव जी ने ऐसा नहीं बोला, अच्छा हाँ मैं तुम्हें मिलने आया हूं तुम ऐसा कह रहे हो, अत्यंत क्रोधित होकर वो त्रिशूल उठाए उसको मारने के लिए। लेकिन फिर पार्वती जी ने उनको बचाया, अपने नहीं नहीं शांत रहे आपका भाई है। और फिर भृगु मुनि किनके पास गए, विष्णु के पास। और वहां जाके उनको छाती पे लात मार दी। सोचिए पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने केवल मन से आदर नहीं किया, उसमें ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। शिव जी को उन्होंने वचन से उनका उन्होंने अपमान किया, कटु वचन बोले, शिव जी क्रोधित हो गए। और यहां पे शारीरिक रूप से अपराध कर रहे हैं। सोचिए भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में जहां पे लक्ष्मी विराजमान है, श्रीवत्स कहते हैं, श्रीवत्स जहां पे सेने, वहां पे भृगु मुनि ने लात मारा। और उसके बाद भगवान विष्णु ने क्या कहा कि देखो भृगु मुनि मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका चरण बहुत कोमल है, आप तो ब्राह्मण है, आपके चरण कमल की सब प्रार्थना करते हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आपका चरण कमल का स्पर्श हुआ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरा हृदय बहुत, मेरा छाती बहुत कठोर है और आपके चरण कमल बहुत कोमल है, तो कहीं कोमल चरण कमल से आपको आघात तो नहीं हो गया। और जब भृगु मुनि ऐसा सुने तो भृगु मुनि समझ गए, वो प्रसन्न होके हंसते हंसते सारे ऋषियों के पास आए और कहे कि मेरी परीक्षा सफल हो गई, ऐसे ऐसे हुआ और इसलिए आज का निर्णय हो गया कि तीनों में महान भगवान विष्णु है। तो वास्तव में भृगु मुनि तो केवल परीक्षा लेने के लिए ऐसा किए, और ब्रह्मा जी शिव जी भी केवल इस तरह से किए क्योंकि उनका भी लक्ष्य था कैसे विष्णु जी का गुणगान हो, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा केवल अभिनय किया, नाटक किया। तो लेकिन खैर इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, प्रभुपाद जी कहते हैं फिटनेस द मैन इज नोन बाय अबिलिटी टू टॉलरेट ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा, कृष्ण किताब में कहते हैं कि जो महान व्यक्ति है उसकी महानता का क्या परीक्षा है कि जब उसके सामने ऐसा कोई कठिन परिस्थिति आती है, समस्या जिसमें विचलित हो सकता है, उसमें अगर विचलित ना होए तो यही महान पुरुष का लक्षण है। क्योंकि देखिए विष्णु जी को लात मारे तो कोई भी साधारण व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा, अरे कोई उनका भूल नहीं है, लेटे हैं वो, और कोई आके अचानक से लात मार दे तो बहुत स्वाभाविक है कि हम सब उससे बहुत क्रोधित हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, तुरंत क्या उन्हें उनको प्रहार करेंगे या कम से कम उनको गाली तो देंगे। लेकिन यहां पे विष्णु जी बल्कि उनको क्षमा मांग रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपको दर्द कष्ट हुआ होगा। तो ये महान पुरुष का लक्षण है, क्योंकि ये हम सबके जीवन में अवश्य ऐसे परिस्थिति आएंगे जब कोई हमारा अनादर करे या कोई हमें कष्ट दे, हमें बिना कोई हमारी भूल कोई हमें कष्ट दे, ऐसा आएगा हम सबके जीवन में। लेकिन हमारी महानता यही है कि हम अगर उस परिस्थिति में हम विचलित ना होए, और हम कैसे इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमेशा अगर भगवान कृष्ण की चिंता में रहे, केवल उनका स्मरण करें, उनका नाम जप करें, तो हम में ऐसी सहनशीलता आ जाएगी। त्रिनादपि सुनीचे न तरोरेव सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तन्य सदाहरि। तो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पता चलता है हमें कि वही व्यक्ति भगवान कृष्ण का कीर्तन सतत कर सकता है जो सहनशील हो या जो विनम्र है। और जो भगवान का नाम हमेशा जप करता है उनमें ये दुगुण अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए कई बार भक्त पूछते हैं हम कैसे विनम्र हुए, हम कैसे सहनशील हुए। तो अगर हम हरि नाम का जप निरंतर करें और अच्छे रूप से करें तो हम ये गुण अपने आप धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्व गुणस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महत गुण मनोरथेना सती धावतो गई। श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद का श्लोक है, कहते हैं जो भगवान हरि के भक्त है उनमें अपने आप सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं अपने आप। और अगर कोई भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है तो उनमें कोई अच्छे गुण नहीं हो सकते। इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण की अच्छी तरह से भक्ति करें, नाम का उच्चारण करें, भक्तों का संग करें, तो धीरे धीरे हमें भी अच्छे अच्छे गुण धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। तो अगर हमें भी इस गुणों का और साथ साथ में हमें प्रयास भी करना चाहिए, इन गुणों का अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे हमें सोचना चाहिए कैसे महान भक्त क्या आचरण से हमें क्या सिखा रहे हैं। तो हमें भी इस प्रकार कोई अगर जीवन में हमारी समस्या है तो हमें भी सहनशील होना चाहिए, तुरंत प्रतिकार नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। कई लोग भगवान को उनपे वो करते हैं दोषारोपण कि भगवान ऐसा आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा, आप मेरे को इतना कष्ट दे रहे। नहीं, भक्त कभी ऐसा नहीं कहते, बल्कि भक्त का क्या उनका तो ये मानसिक स्थिति रहती है कि मुझे अपने जो मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मुझे तो और दंड मिलना चाहिए, लेकिन आप भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि आप मुझे बहुत कम दंड दे रहे हैं। ये भक्तों की मनोस्थिति है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग बपुर भी विदधन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इस तरह से जिनका विचार है वो कभी भगवान को दोषारोपण नहीं करते, लेकिन वो क्या सोचते हैं हमेशा कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं मेरे अपने कुकर्मों की वजह से, क्योंकि मैंने इतना बुरा कर्म किया इसलिए मुझे कष्ट मिल रहे, और भगवान तो इतने दयालु है कि मेरे कष्ट को वो कम कर दिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई का हाथ कटे तो उसे सोचना चाहिए कि उंगली कटे तो उसे सोचना चाहिए कि मेरे पाप कर्म इतने थे कि पूरा हाथ कट जाना चाहिए था, लेकिन भगवान इसको छोटे रूप में मुझे दिए, केवल मैं थोड़ी लिमिट में गया। तो उस प्रकार भक्तों को सोचना चाहिए, और हर अवस्था में उन्हें क्या करना चाहिए, ऋतवा पपुर से विदधन नमस्ते, अपने हृदय से, अपने वचनों से और अपने शरीर से हमेशा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए हर अवस्था में। और अगर हम इस तरह करेंगे तो अवश्य ही हम भगवान को धाम को प्राप्त हो जाएंगे। और हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में भी प्रभुपाद जी कितने सहनशील थे, और उनमें सारे लक्षण थे, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वभूतानाम अजात शत्रुवा शांत, वो सबके प्रति उनका करुणा भाव था और किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। तो कुछ ही दिन पहले हमारे कृष्णमल्ला मंदिर का वार्षिक उत्सव था, 38वां वार्षिक उत्सव। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी मंदिर बनाए, हम तो यहाँ पे आराम से आके दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इतनी सुंदर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाए। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हर भक्त को इस्कॉन में प्रभुपाद जी की जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, जो प्रभुपाद जी का बायोग्राफी है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। उससे हम सीखेंगे कैसे प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया, हाँ, कितने सहनशील थे, कितने कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया इस संस्था को बनाने के लिए। तो कृष्ण बलराम मंदिर जो इतने आसानी से नहीं बना, बहुत इसमें कठिनाई, बहुत समस्याएं थी। सबसे पहले तो जो जमीन मिला, उसके बाद कई गुंडों ने इस जमीन को वापस से लेने का प्रयास किया, तो प्रभुपाद जी और सारे भक्त मिलकर रक्षा किए। फिर बाद में यहाँ पे जो ये, क्योंकि उस समय वृंदावन था उससे बहुत बाहर, उस समय कुछ नहीं था। ये आप में से जो पुराने भक्त हैं जो कई साल पहले वृंदावन आए होंगे, आप देखे होंगे कि पहले यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल था, केवल फोगला आश्रम छोड़ के इस इलाके में और कुछ भी नहीं था। ऐसे जंगल में जमीन मिला, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं थी, पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, मीठा पानी ना, टॉयलेट बाथरूम कुछ भी नहीं था, इतनी गर्मी इतनी सर्दी, इसमें भक्त रहते थे। और कैसे भक्त, वो विदेशी भक्त थे, सोचिए, जो इतने आराम में रहने का जिनको आदत है, जिनके देश में इतनी गर्मी नहीं होती और सब ऐसो आराम में रहते हैं, वैसे भक्त, विदेशी भक्त, वो भी प्रभुपाद जी के शिष्य यहाँ पे रहे। क्यों? केवल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए। प्रभुपाद जी की बहुत विशेष इच्छा थी कि वृंदावन में एक बहुत सुंदर मंदिर बने, और केवल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए वो सारे भक्त यहाँ पे रहे। और बहुत समस्या उनको, बहुत समस्या आई वहां पे, कई भक्त बीमार हो जाते थे, किसी को मलेरिया, किसी को टाइफॉइड, किसी को जॉन्डिस, बड़े बड़े मच्छर यहाँ पे थे, इतनी गर्मी थी। कुछ दिन पहले गुणानव प्रभु आए थे, प्रभुपाद जी शिष्य जो कि इस मंदिर को बनाने के मेन मैनेजर थे, दो भक्तों का विशेष सहयोग है, सुरभि प्रभु है जिन्होंने डिजाइन किया इस मंदिर को, और गुणानव प्रभु जो कि मैनेजर थे, जो सब कुछ देख रहे थे कैसे मंदिर निर्माण हो, पैसा अकाउंट वगैरह सब देख रहे थे, तो बहुत उनका सहयोग है। और उसके पहले गुरु कृपा प्रभु ने पैसा लाया बहुत मंदिर के लिए, और यमुना माता जी और गुरुदास प्रभु यहाँ पे थे। यमुना माता जी जो प्रभुपाद जी बहुत महान शिष्य है, जो डेली हम सुनते हैं गोविंद मादि पुरुषम, उन्होंने गाया है, तो वो जाके इस जो सुंदर विग्रह है कृष्ण बलराम गौर नेता राधा श्याम सुंदर, उसका उन्होंने चित्र बनाया और जयपुर गए और इन मूर्ति को उन्होंने बनाया। तो इन सब महान भक्त बहुत यहाँ पे उन्होंने परिश्रम किया, और आज उन्हीं के परिश्रम के फलस्वरूप हम यहाँ पे कृष्ण बल्ला मंदिर में हम बैठे हैं। तो एक बार की कथा है, गुणानंद कहते हैं कि एक्चुअली उस समय सीमेंट नहीं मिलता था यहाँ पे, उस समय सीमेंट सरकार से प्राप्त होता था, तो बहुत कठिनाई से सीमेंट मिलता था। आज की तरह नहीं है कि बस दुकान में जाइए पैसा दीजिए सीमेंट मिल जाए, नहीं, बुकिंग होता था सीमेंट के लिए। तो कई बार भक्त मथुरा जाते थे और खाली हाथ लौट आते थे, सीमेंट मिलता नहीं था। तो एक बार ऐसे गुणानंद प्रभु गए थे मथुरा सीमेंट लाने के लिए, गर्मी का समय था और आप जानते हैं गर्मी में यहाँ पे लू चलती है, तो रिक्शे में जा रहे थे और लू चल रही थी, और इतनी तेजी से लू चली कि रिक्शे से गिर गए बेहोश होके गुणानंद प्रभु मथुरा के जाने के रास्ते में, और आसपास कोई नहीं था, तो उनके पास सात जो भक्त थे किस प्रकार उनको उठा के लेके पास में एक घर था वहां लेके गए, और वहां पे उनको किस तरह एक महिला आई, उनको थोड़ा पानी वगैरह जान दी, और फिर वो बाहर चेतना में आए। तो हम सोच सकते हैं कितने वो परिश्रम किए, कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, लेकिन उनके उद्देश्य क्या था, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना। और प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था, यह मंदिर क्यों बनाना चाहते थे, हम सबके लाभ के लिए। आज देखिए कैसे हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और कृष्ण बलराम जी का दर्शन कर रहे हैं। और एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभु, आपके मन में कभी प्रश्न आता है कि कृष्ण बलराम मंदिर क्यों, क्योंकि वृंदावन में साधारणतः तो राधा कृष्ण जी का मंदिर होता है। तो प्रभुपाद जी इसके कारण बताते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक मुख्य कारण है कि मैं यहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर इसलिए स्थापना किया, क्योंकि मैं पूरे विश्व को दिखाना चाहता हूं कि वही कृष्ण बलराम क्या बन के आए, गौर निताय ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत होइलो सी बलराम होइलो निताय। तो सामने हम जब दर्शन करते हैं कृष्ण बलराम, उनके साइड में कौन है, गौर निताय। तो वो पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि वही कृष्ण बन के आए चैतन्य महाप्रभु और बलराम बन के आए नित्यानंद। तो ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण किया। और दूसरा कारण ये भी है कि जो स्थान है इसका नाम क्या, रमन रेती, यहाँ पे कृष्ण बलराम लीला किया करते थे, कुश्ती लड़ते थे। और एक भी कारण है कि वृंदावन में तो कई सारे राधा कृष्ण मंदिर है, तो प्रभुपाद जी थोड़ा, हमेशा प्रभुपाद जी का लक्षण था उतना कुछ नया करना चाहते थे, दूसरों से हटके बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे ताकि लोग प्रशंसा करें इसको। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि अलग से कृष्ण बलराम मंदिर यहाँ पे बने, क्योंकि राधा कृष्ण मंदिर तो कई है। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर का स्थापना किया, और अवश्य राधा श्याम सुंदर भी यहाँ पे है। अब बताते हैं प्रभुपाद जी ने स्वयं, राधा जी जो ऐसे करके खड़े हैं, प्रभुपाद जी ने स्वयं उसको बताया यमुना माता जी को कि राधा रानी ऐसे बनाना। और आप देख सकते हैं कि ये सारे विश्व में सबसे सुंदर राधा रानी हमारे यहाँ पे विराजमान है। तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा हम सब पे है कि कृष्ण मल्ला मंदिर की स्थापना किए। हम सब बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पे हम रह पा रहे हैं। प्रतिदिन हम श्री गौर निताय कृष्ण बलराम जी राधा श्याम सुंदर का हम दर्शन कर सकते हैं और भगवान कृष्ण का नाम जप करें। यहाँ पे 24 घंटे कीर्तन चल रहा है, हमेशा कीर्तन होता है, हम नाम जप कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, भागवत प्रवचन सुन सकते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है कि हम वृंदावन में रह के हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। तो किसी कोई टीका टिप्पणी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, अच्छा अच्छा, तो कोई प्रश्न टीका टिप्पणी कुछ है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।